हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। हृदांश की बात सुनकर कुछ पल तक आरना पलक तक नहीं मार पाई। एक पल को उसके भाव ऐसे सुन और हैरानी भरे हो गए थे जैसे उसने साक्षात अपनी खुली आंखों से कोई भूत देख लिया हो। लेकिन कुछ पल बाद ही आरना के होठों पर तंज भरी मुस्कान तैर गई। यू नो वॉट मिस्टर अग्निहोत्री, मैं जानती हूँ कि आप में लाख बुराइयाँ हैं, लेकिन ऑनेस्टली मुझे आपकी एक क्वालिटी वाकई भी काबिले तारीफ लगती है, और वो ये है कि आप इंसान के सामने कोई मुखौटा चढ़ाकर नहीं रहते। ठीक ऐसे ही जितनी नफ़रत या गुस्सा है आपके दिल में मेरे लिए, उसे साफ शब्दों में जाहिर करते आए हैं आप। लेकिन आज आपने अपनी उस इकलौती क्वालिटी को भी धुंधलाने की कोशिश की। आप जानते हैं, आपकी जुबान से ज्यादा आपकी ये आंखें बोलती हैं, और इनमें इस वक्त साफ नजर आ रहा है कि कुछ देर पहले आपकी जुबान से निकला हर एक लफ्ज सिर्फ झूठ और दिखावा है, क्योंकि आपकी इन आंखों में इस वक्त भी मेरे लिए वही नफरत और गुस्सा साफ देख सकती हूँ मैं। इसीलिए बेहतर होगा कि आइंदा मेरे साथ ऐसे जज्बाती और इमोशंस का कोई भी गेम खेलने से पहले अपनी इन आंखों को भी झूठ बोलना सिखाकर मेरे सामने आए। आरना की बात सुनकर एक पल को रिदांश के चेहरे पर सरप्राइज्ड एक्सप्रेशन आ गए, क्योंकि रिदांश के दिमाग और दिल को किसी के लिए भी पढ़ पाना बहुत ही मुश्किल था, मगर आरना ने एक बार में ही उसके दिमाग को सीधा सीधा पढ़ लिया था। लेकिन अगले ही पल वो अपने सरप्राइज्ड एक्सप्रेशन छुपाकर हमेशा की तरह अपने चेहरे पर ब्लैंक एक्सप्रेशन का नकाब ओढ़ लेता है। मानना पड़ेगा, बल्कि दांत देनी पड़ेगी तुम्हारे दिमाग की, इतनी आसानी से मेरी असल बात समझ गई। वैसे मैं चाहे तुमसे कितनी भी नफरत क्यों ना करूं, लेकिन ये बात मैं चाहकर भी इनकार नहीं कर सकता कि तुम वाकई में बहुत इंटेलिजेंट और ज़हीन हो, और इसके लिए मेरा दिमाग हमेशा ही तुम्हें प्रेज़ करता आया है। यू नो, गलती मेरी ही है, आखिर मैंने ऐसा सोचा भी कैसे कि तुम जैसी शातिर लड़की को ऐसे इमोशंस के जाल में फंसाया भी जा सकता है। टोटली माई मिस्टेक। मैं आपको कुछ भी कहूं, लेकिन हकीकत ये है मिस अग्निहोत्री कि आप मुझे लेकर अपने दिल दिमाग में एक सोच कायम कर चुके हैं जो शायद मेरी लाख दलीलों और सफाई से भी अब नहीं बदल सकती। इसीलिए आपको अब मेरे बारे में जो भी जितना भी बुरा सोचना है सोचें, क्योंकि अब ना तो मैं आपको कोई सफाई देने वाली हूँ और ना ही मुझे आपसे या आपके किसी भी बातों से कोई फर्क ही पड़ता है खाने की तरफ देखकर, और ना ही मुझे आपकी इन झूठी हमदर्दियों की ही जरूरत है। चुपचाप खाना खाओ। मुझे नहीं खाना मतलब नहीं खाना। अब तक मैं आपके हर ऑर्डर को एक नौकर की तरह मानती आई क्योंकि मैं मजबूर थी, लेकिन अब मेरी कोई मजबूरी नहीं, और ना तो मैं अब आपके आगे झुकने वाली हूँ और ना ही अब मैं आपसे किसी रहम की भीख मांगने वाली हूँ। तो आपको जो भी करना है कीजिए। नाउ आई रियली डोंट केयर। ओके, अगर यही बात है तो ठीक है, फिर मैं अभी अपने लोगों को फ़ोन करता हूँ और उनको बोलता हूँ कि बड़े ही इज्जत और एहतराम के साथ तुम्हारे बाप को अभी के अभी तुम्हारे एक्स घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दें। कहना क्या चाहते हैं आप? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तुम्हें याद दिला दूँ वाइफी कि अब उस घर का ओनर मैं हूँ, और मेरी एक इशारे पर तुम्हारे बाप को मुंबई की सड़कों की धूल छाननी होगी। सो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। आरना जब रिदांश की बात सुनती है तो उसकी सारी हिम्मत और निडरता खिड़की के रास्ते से बाहर निकल जाती है। आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता वाइफी? आफ्टर ऑल, अकॉर्डिंग टू यू, मैं तो एक राक्षस हूँ, एक डेविल, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप सच में एक राक्षस हैं। आप देखना, आपको नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। फिलहाल वैसा करो जो मैं कहूँ। बोलिए, क्या हुक्म है मेरे लिए? फिलहाल तो इतना ही। आरना एक नज़र रिदांश को घूरती है और फिर चुपचाप खाने की तरफ बढ़ जाती है। आरना खाना खाने के लिए तो गुस्से में बैठी थी, लेकिन जैसे ही वो पहला निवाला लेकर खाना शुरू करती है तो इतने दिनों बाद ऐसा लजीज खाना खाने के बाद उसे एक सुखद अनुभूति होती है, और वो किसी बच्चे की तरह सब भूलकर बस खाने में बिजी हो जाती है। और वो खाने में ये भी भूल चुकी थी कि रिदांश भी यहीं है और उसकी नज़रें इस वक्त उसी पर टिकी हुई थीं। अपना पेट भर जाने के बाद अब आरना को कुछ सुकून और राहत महसूस हो रही थी, और अब उसे कुछ अच्छा भी फील हो रहा था। और फाइनली जब आरना अपनी नज़रें उठाती है तो सामने खुद को देखते रिदांश को देखकर थोड़ा असहज हो जाती है। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? क्योंकि वो क्या है ना, पहली बार देख रहा हूँ कि कोई बेमन और गुस्से से कैसे और कितना कम खाना खाता है। वो तो मुझे बहुत भूख लगी थी। एनीवे, मुझे किसी का और खासकर आपका एहसान नहीं रखना, सो थैंक यू। इसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि रिदांश अग्निहोत्री किसी का एहसान नहीं रखता। एक हाथ का बदला दूसरे हाथ से सूद समेत ज़रूर देता है, चाहे फिर वो दोस्ती का हो या फिर दुश्मनी का। तुमने मेरी माँ की हेल्प की और उसके बदले मैंने तुम्हारी हेल्प की, हिसाब बराबर। तभी दरवाजे पर आयुष दस्तक देता है और रिदांश उसे अंदर आने के लिए कहता है। कैसी है भाभी? अब आप, टॉम ने बताया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं। मैं ठीक हूँ अब, यही पूछने के लिए आए थे तुम बस? नहीं भाई, वो मैं आपसे ये कहने आया था कि मेरे निकलने का टाइम हो गया है। तुम चलो, मैं आता हूँ। जी भाई, बाय भाभी, टेक केयर, यू टू, बाय। इतना कहकर आयुष वहाँ से चला जाता है। वैसे तुम्हें अपने इस मासूम से दिखने वाले चेहरे को यूज करके लोगों को अच्छे से बेवकूफ बनाना आता है, और मजे की बात तो ये है कि ज्यादातर लोग तुम्हारे इस चेहरे से आसानी से धोखा खा भी जाते हैं, सख्त भाव से। लेकिन एक बात याद रखना, मैं रिदांश अग्निहोत्री हूँ, तुम्हारे खून की फितरत को अच्छे से जानता भी हूँ और समझता भी हूँ। और हाँ, एक बात और, मेरी माँ को तुमने चाल चलकर भले ही अपनी लत लगा दी हो, लेकिन तुम अकेले में मेरी माँ के आसपास भी नहीं भटकोगी, क्योंकि तुम पर मुझे रत्ती भर भी भरोसा नहीं, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, रिमेम्बर दिस। इतना कहकर रिदांश वहाँ से चला जाता है और आरना गुस्से, हैरानी और असमंजस के मिले जुले भाव से उसे बस जाते हुए देख रही थी।